ॐ आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भाषे वदासी कृतदुग्धसिन्धुम् मन्दस्मितरनिन्दितशारदेन्दुम् वन्दे रविन्दः शनसुन्दरी त्वाम् जयन्ति मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाख्यमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तु ते शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति। तीसरा श्लोक देखें। अश्रद्धधानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमाम् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदम् सर्वम् जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम् तेष्वस्थितः। परम पूज्य प्रातस्मरणीय कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी और हमारे चंद्र सूर्य के रूप में परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत विभूषित वृंदावन के पूज्य महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी, इनको लोग चंद्रमा कहते थे, दुनिया के लोग चंद्रमा, और स्वामी करपात्री जी को सूर्य कहते थे। सूर्य क्योंकि वो तो सीधे सीधे प्रवचन में बोलते थे कि किसी माई के लाल है तो आ जावे, हाँ, उनका ये भाषा था। और उनका इतना तेज था, केदार घाट में बनारस में करपात्री जी नौका में रात के 1 बजे गंगा स्नान के लिए जाते थे, देखो, और जा करके महाराज जो है ना शीर्षासन करते थे, शीर्षासन, और शीर्षासन में भगवान शंकर का शीर्षासन करते हुए रुद्राभिषेक करते थे, ऐसे शीर्षासन करते रुद्राभिषेक, नमो बिल्मिने चक्रवर्तिने जल चढ़ा रहे हैं। और जगदम्बा राज राजेश्वरी का ललिता सहस्त्र नाम का नित्य सहस्त्रार्चन जो है ना स्वामी जी करते थे। इसलिए शिव जी की भक्ति और देवी जी की भक्ति के द्वारा उनको वो कृपा मिला था, तपस्या का वो फल था कि सारे रिद्धि सिद्धि जो है ना उनके पीछे घूमते थे स्वामी करपात्री। और स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी को तो लोगों ने जो है ना, वो तो कुछ लिखते ही नहीं थे, और इनकी प्रवचन सुनने के बाद मुझे तो लगता है कि हम लोग क्या बोलें। अभी सुन रहा था प्रवचन, क्या अद्भुत भाषा, अद्भुत वाणी, अद्भुत जो है ना उनका स्वर, ईश्वर ने दिया था। लेकिन महाराज जी बड़ा सरल थे, देखो, हम लोग वहां वृंदावन में रहते थे, वहां के कोठारी अनुभवानंद था, गुजराती था वो महात्मा। कुछ लोग 1 बजे आए, संत लोग, बोले कि भोजन नहीं है, हो गया भोजन, तो महाराज जी को पता चला कि अनुभवानंद स्वामी जी ने ऐसे कहा, तो बड़े नाराज हुए, उसको बुलाए, बोले देखो जी, ये जो मठ है, आश्रम है, ये संसार ये तूने नहीं दिया, देने वाला भगवान है, ये कृष्ण है, जो अन्नपूर्णा सबको भोजन देती है उसको तूने मना क्यों कर दिया, भोजन नहीं था तो भोजन कराना चाहिए था। इसलिए भोजन में अन्न में किसी किसी को भी शत्रु भी आवे तो उसको मना नहीं करना चाहिए। अन्नम न निंद्यात तद्व्रतम उपनिषद में आया, तैतरी उपनिषद। अन्न की निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे मोटू चावल हो, चाहे पतला चावल हो, चाहे बासमती हो, अन्न अन्न है। अन्न की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। तद्व्रतम, अन्न ही ब्रह्म है। तो इतने बड़े उदार भाव जो है ना स्वामी जी में था। बार बार लोग कहते थे, एक पति पत्नी आए, बोले कि महाराज जी, तो पूछा स्वामी जी ने ये कौन है, तो उसके पत्नी ने कहा कि देखो महाराज जी, ये कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण, बोले कुंभकर्ण क्यों है, बोले इसको जगाना पड़ता है, बहुत सोता है और रात में इतने नाक बजता है कि दो कमरे से तीसरे कमरे भी सुनाई पड़ता है। तो उसने पूछा ये कौन है, स्वामी जी ने पूछा, बोले महाराज ये सूर्पणखा है, इनके नाखून देखिए बड़े बड़े, नाक बड़े, आंख बड़े, ये बहुत दोष देखने वाली है तो सूर्पणखा है। तो स्वामी जी ने पूछा तुम लोग को कैसे लग रहा है, इनको तुम सूर्पणखा बनाया, ये कुंभकर्ण बना, बोले कुछ नहीं, ये तो हमारा मनोरंजन है, हमारी ये तो एक आनंद है कि हमारे पति और पत्नी में वो प्रेम है कि हम सूर्पणखा भी बन सकते हैं, कुंभकर्ण भी बन सकते हैं, कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये प्रेम की भाषा है, हमारा प्रेम है, हमारा भाव है, ये आपकी श्रद्धा है। इसलिए गीताकार कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अस्य अध्यात्म ज्ञानस्य पुरुषा अश्रद्धाना अप्राप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार बत्मनि। यहां परंतप शब्द का अर्थ होता है परम, कहते हैं शत्रु को, परम शत्रुन तापयति इति परंतप। अर्जुन का एक नाम था परंतप, दशनाम में दशनाम था अर्जुन का, दष्टो नाम था, गांडीव, कौन्तेय, किरीटी, अर्जुन, धनंजय, पांडव, पार्थ, सभ्यसाची, महाबाहो, ऐसे करते करते एक भी नाम था परंतप। परंतप कह करके यहां विशेषण इसलिए दे रहे हैं कि परम शत्रुन तापयति इति परंतप, जो शत्रु को तपावे। अर्जुन के कोई शत्रु हो, अधर्मी हो, तो उसको देख करके वो डर जाता था, अर्जुन को देखने पर भय होता था, क्योंकि अर्जुन जो है महादेव का वरदान था कि अर्जुन को कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो कृष्ण की निंदा करेगा उसको मैं वध करूंगा, जो धर्म का हानि करेगा उसका मैं नाश करूंगा, जो मेरे गांडीव धनु की निंदा करेगा उसका मैं नाश करूंगा, और जो भाई युधिष्ठिर की निंदा करेगा उसका भी नाश करूंगा। अर्जुन की चार प्रतिज्ञा रही। ये देखो, अर्जुन जब युद्ध करते थे तो कहते हैं अर्जनाद ज्ञानम इति अर्जुन। अर्जुन का लक्षण पाणिनि व्याकरण में इस रूप में आया, अर्ज अर्जने धातु से अर्जुन बनता, अर्ज अर्जने धातु से करणार्थक ल्यूट प्रत्यय करेंगे तो संस्कृत में अर्जुन शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है अर्जयति ज्ञानम धर्मम इति अर्जुन। जो ज्ञान और धर्म को अर्जन करे उसको अर्जुन कहते हैं। जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ की ओर जाएंगे तो एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम है अर्जुन। वो पेड़ जो है ना सीधा लगता है, ऐसे सीधा, और वो पेड़ जो है ना देवदारू पेड़ के समान, वो सीधे होगा, बढ़ेगा बहुत दूर, उसमें बीज में वो नहीं होता है, कोई टहनी नहीं होते, कुछ नहीं होते, सीधे बढ़ेगा। वो इतना सरल पेड़ है कि उसको शास्त्रों में अर्जुन नाम के कहते हैं। तो अर्जुन वो था जो बहुत सरल था, देखो बहुत सीधा था। कुंती ने कहा कि देखो एक काम करो, तुम जाओ और जो ये फल लाए हो पांचों पांडव बांट करके खाओ। तो अर्जुन ने हां कर दिया, द्रौपदी को लाया स्वयंवर में, तो पांचों पांडवों से विवाह हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि अर्जुन के मन में भाव है परमतप, शत्रु को देख करके जो है ना शत्रु उससे डरते थे, भीष्म जी, द्रोण जी, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, शल्य, ये लोग शत्रु नहीं थे। लेकिन भीष्म जी को पूछा गया कि आप तो शत्रु नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप शत्रु के रूप में आए यहां युद्ध करने के लिए। तो भीष्म जी ने कहा कि देखो ये पांडव मेरे शत्रु नहीं है, मेरे बेटे हैं, लेकिन एक चीज सुनो आप। बोले क्या है? अर्थस्य दासोस्म्यहम बद्धो अस्मि न कौरवे। ये देखो, अर्थस्य दासोस्म्यहम न तु अर्थस्य दासः। ये जो धन है, अर्थ है, लक्ष्मी है ना, ये किसी का दास नहीं है। अर्थस्य दासोस्म्यहम, संसार जो है ना अर्थ का दास है। अर्थ जो लक्ष्मी है ना, वो किसी का दास नहीं है, वो किसी की दासी नहीं है। बद्धो अस्मि न कौरवे, इसलिए भीष्म ने कहा कि मैं कौरव से बंधा हुआ हूं, धन के द्वारा, अर्थ के द्वारा उन्होंने सेवा की और सेवा के चलते मैं बसीभूत हूं। ये अर्थ जो है ना किसी का दास नहीं हो सकता दुर्योधन, ये तो जो है ना अर्थ के दास सब है। बड़ा अद्भुत लिखा महाभारत में कि अर्थस्य दासोस्म्यहम बद्धो अस्मि न कौरवे। अर्थ किसी का दास नहीं है, लक्ष्मी किसी का दास नहीं है, लक्ष्मी किसी की दासी बनना नहीं चाहती, लक्ष्मी उसी का दासी बनती है जो दाता है, जो परमेश्वर के लिए, धर्म के लिए दान देता है, जो ईश्वर के लिए, परोपकार के लिए अपना जीवन को समर्पित करता है, लक्ष्मी उसका दासी है। एक अर्थ ये है। इसलिए यहां अर्जुन को भगवान ने कहा कि हे परमतप, शत्रु को तपाने वाले, ऐसे क्यों कहा? धर्म पूर्वक युद्ध करने वाला अर्जुन है, अधर्म पूर्वक नहीं करता है। निशस्त्र व्यक्ति को मारने वाले ये लोग नहीं थे, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। इसलिए कर्ण ने जब बाण चलाया ना, तो कर्ण ने बहुत बाण मारा। जब कर्ण ने बाण चलाया तो कृष्ण ने बहुत प्रशंसा की। उसने कहा, कर्ण तू धन्यवाद के पात्र है। कर्ण का बाण जब चलाया, महाभारत में कथा है, कर्ण ने जब बाण चलाया तो श्री कृष्ण भगवान ने बहुत प्रशंसा किया। बोले, कर्ण राधे अद्भुत है। तो अर्जुन ने धनुष बाण छोड़ दिया। अर्जुन ने कहा, धनुष बाण छोड़ दिया। उसने कहा, महाराज ये कर्ण की प्रशंसा। तो भगवान ने कहा कि देखो, जिस रथ में हम बैठे हैं, इस रथ का नाम है नंदीघोष रथ। भगवान जिसमें बैठते हैं, बलराम जिसमें बैठते हैं, उस रथ का नाम है तालध्वज रथ, और सुभद्रा जी जिसमें बैठती है, उस रथ का नाम है देवदलन रथ। देवदलन रथ के सारथी हैं ये अर्जुन। अर्जुन जो है ना देवदलन रथ के सारथी है। सुभद्रा जी महाशक्ति है, दुर्गा का रूप है। युद्ध करने के लिए जब सुभद्रा जी कभी गई है तो उसके सारथी अर्जुन है, ये कथा है पुराणों में। और बलराम भगवान के जो रथ है, उस रथ का नाम है तालध्वज। एक ताल वृक्ष है, उसके जो ध्वजा है उनके रथ में है, इसलिए बलराम जी के रथ को तालध्वज रथ संसार में, शास्त्रों में कहा है। और कृष्ण का जो रथ है वो नंदीघोष रथ है, जिसमें 33 कोटि देवता है, और महारुद्र के अवतार के रूप में पवन पुत्र श्री हनुमान जी वहां बैठे हैं। इसलिए उस रथ को कपि ध्वज कहते हैं, कपि ध्वज, जिनके ध्वजा में कपि है श्री हनुमान जी है, और कपि ध्वज रथ जिसमें हनुमान जी है, कृष्ण है, जब कर्ण बाण चलाते थे ना तो इनका जो रथ है ना पीछे हो जाता था अपने, ऐसे लिखा है महाभारत में, कर्ण जब बाण चलावे तो इनका रथ जो है ना दो हाथ पीछे हो गया। भगवान ने कहा कि धन्य है ये कौन्तेय राधे, जब बाण चलाता है तो कर्ण के बाण से कृष्ण और हनुमान जी जो है ना पीछे हो जाते हैं। इसका मतलब आपके पास यदि धर्म है, आपके पास सत्य है, तो आप ईश्वर को भी पीछे कर सकते हैं। धर्म और सत्य से बढ़कर के संसार में कोई भी बड़ी तपस्या नहीं है, इसलिए जो धर्म जहां है वहां मर्यादा है, और जहां सत्य है वहां ज्ञान और वैराग्य है। सत्य जब जीवन में आवे तो ज्ञान वैराग्य को बुलाना नहीं पड़ता, और धर्म यदि है तो मर्यादा अपने आप आता है। इसलिए गीताकार ने कहा कि हे परमदेव, धर्मस्य अस्य पुरुषः अश्रद्धधानः। ये जो अध्यात्म ज्ञान रूपी जो धर्म है, इसमें कई परंपरा है। वल्लभाचार्य यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, शरणागति हो जाना यही हमारे लिए धर्म है। हम लोग सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साजुज्य, मुक्ति चार है वो लोग मानते हैं पुष्टि मार्ग के। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साजुज्य, जैसे भगवान हैं, कृष्ण हैं, वैसे आप रहे, उनके यहां रहे। स्वामी अखंडानंद से एक ने पूछा कि महाराज, भगवान यदि दर्शन दे देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? बोले भगवान के साथ रहना, उनके साथ रहो। तो एक ने कहा कि भगवान यदि चाय पियेंगे तो हम भी पियेंगे। बोले तुम भी पीना। तो बैकुंठ में चाय बनता है कि नहीं बनता है? बोले वहां चाय तो बनता नहीं, वहां कॉफी नहीं बनता, वहां कुछ नहीं बनता। तो बोले वहां क्या होता है? वहां तो रिद्धि सिद्धि है, लक्ष्मी है, कामधेनु है, वहां जो भोजन बनेगा वही तुम खाना। तो भक्त प्रहलाद जी ने अपने एक देश में घूमते घूमते गए तो जमुना जी के तट पर दिल्ली में एक सुअर को देखा। उसने सुअर को पूछा कि विष्णु भगवान कल आने वाले हैं और बैकुंठ जाने की तैयारी में हम सब लोग हैं, तुम चलोगे? सुअर जी ने कहा कि देवी को पूछूं थोड़ा। तो जो सुअरी है ना उसके देवी को पूछा। बच्चों ने कहा कि बैकुंठ तो चलो, अच्छी बात है। तो सुअरी ने उसने कहा प्रहलाद जी को कि महाराज ये बोलो, वहां भोजन की व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्था है? प्रहलाद जी ने कहा बैकुंठ है भाई, वहां तो सीधे रिद्धि सिद्धि है, सुगंधी द्रव्य है, और वहां कहना क्या है? सुअरी ने कहा कि हमारे भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है? तो प्रहलाद जी ने कहा वहां तुम्हारे भोजन नहीं मिलेगा, जो तुम खाते हो ना वो नहीं मिलेगा वहां। तो सुअर ने कहा कि हमको बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है, जब हमारी ही भोजन नहीं मिलेगा तो हम बैकुंठ क्या करें? तो प्रहलाद जी ने अपने ग्रंथ में नोट किया कि बैकुंठ वो जाना नहीं चाहता, सत्संग सुनना नहीं चाहता, प्रेमपुरी में आना नहीं चाहता, क्योंकि ये बैकुंठ है, यहां का आनंद स्वर्ग और मर्त से भी बढ़ करके है, लेकिन यहां वो आनंद आना नहीं चाहता क्योंकि वो सुअर है। सुअर को जो है ना उसका भोजन ही प्रिय है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न यत्र भागवतस्तदाश्रयाः, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः, सुरेश लोकोपि न वैशसेव्यताम। भागवत जी में आया कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहां भगवान की कथा नहीं होते, न यत्र भागवतस्तदाश्रयाः, जहां संतों का आगमन नहीं होता, गुरुजन नहीं आते, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, जहां यज्ञ नहीं होता, जहां भजन नहीं होते, जहां संतों और ब्राह्मणों की सेवा नहीं होते, सुरेश लोकोपी न वैश सभ्यताम, यदि स्वर्ग लोक हो इंद्र लोक हो तो वहां जाना नहीं चाहिए। सुखदेव जी ने भारतवर्ष की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां तो सब है, इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि धर्मस्य अस्य पुरुषः, ये जो धर्म है अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान का शंकराचार्य के रूप में शंकराचार्य भाष्य में ये है कि जो अध्यात्म ज्ञान यही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, ऐसे श्लोक नहीं मिलता कहीं। ये श्लोक कहीं भी ग्रंथ में देखो एक साथ नहीं मिलेगा। इसके ऊपर हमने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि ये श्लोक मिलता है क्या, कहीं कहीं मिलता है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि ऐसे मिलेगा आपको, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मे व ना परह, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, ऐसे श्लोक एक साथ नहीं मिलता कहीं भी, चाहे विवेक चूड़ामणि हो, चाहे अपरोक्षानुभूति हो, चाहे अनेक ग्रंथ हो, लेकिन ये श्लोक सत्य है कि भगवत पाद कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। ब्रह्म इसलिए सत्य है कि तीनों कालों में नाश नहीं होता, और जगत इसलिए मिथ्या है कि वो परिवर्तनशील है। आप 100 साल तक हैं तो आपका घर है, आप एक दिन चले जाएंगे तो दूसरे जब शरीर में जाएंगे तो यहां की जो विषय है ना उसको भूल जाएंगे, इसलिए आप शरीर को लेकर के सत्य नहीं है। आप ये शरीर को लेकर के सत्य नहीं है, शरीर जड़ है, इसलिए ये कहते हैं जगत भी मिथ्या है। इसलिए यहां भगवत पाद जो भगवान शंकराचार्य यहां जब व्याख्या करते हैं तो आत्मज्ञानस्य धर्मस्य अस्य स्वरूपे ऐसे लिखते हैं कि जो आत्मज्ञान है यही धर्म है। आत्मज्ञान की प्राप्ति अश्रद्धान, जो श्रद्धालु नहीं है उनको नहीं होता। जो वेदांत वाणी में और गुरुवाणी में जिनका विश्वास नहीं होता, ऐसे साधक को, ऐसे व्यक्ति को ये अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्य परंतप, क्योंकि अश्रद्धालु जो होता है, जो वेदांत में और गुरु में विश्वास नहीं करता। श्रद्धा का दो अर्थ है, श्रद्धाति इति श्रद्धा, जो सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करे वही श्रद्धा है। भक्त प्रहलाद जी के पास भगवान विष्णु आए और इंद्र बन करके आए। प्रहलाद जी ने कहा कि बोलो, तो इंद्र ने कहा कि एक वरदान है कि तुम दान दो। तो इंद्र भगवान ने कहा कि जितने तुम धर्म किए हो ना सब हमको दो, वो भी दिया। जितने सत्य आप बोलते हो वो भी दो, जितने तुमने पूजा पाठ यज्ञ तपस्या जो भी की है सब दो। प्रहलाद जी ने जल उठा करके सब दिया। अंतिम में इंद्र भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो स्वभाव है, शील है, उसको दो। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज ये दे नहीं सकता, ये जो मेरा जो शील है, मेरा जो स्वभाव है, इसको मैं कैसे दूंगा, मेरी स्वभाव है, मेरा शील है, इसको मैं नहीं दे सकता। तो इंद्र के सामने सत्य, धर्म, यज्ञ, दान, तपस्या, पूजा पाठ जितने थे ना, ये सब सद्गुण जो है ना आ गए। प्रहलाद जी को कहा कि जब अपने शील को आप नहीं दे सकते, स्वभाव को नहीं दे सकते, आपकी एक स्वभाव है। आनंदमयी मां के साथ कहीं लोग गए, माता जी बहुत सिद्ध थी आनंदमयी मां, तो एक ने जो है ना पापड़ रखा तो इधर रख दिया भोजन के साथ, और चटनी रख दिया तो इधर रख दिया। तो माता जी ने कहा कि देखो बेटा ये कैसे खाएगा आदमी, चटनी इधर रखा जाता है, पापड़ इधर रखा जाता है, तू इधर रख दिया। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है, तो माता जी हंसते हुए कहा कि हमारी स्वभाव है ये, हमारी स्वभाव ये है कि आप भोजन करते हैं तो जिस हाथ में पानी पीते हैं जिस हाथ में भोजन करते हैं ना उसी हाथ में पानी पीना चाहिए, ये स्वभाव है। जैसे आपने गिलास को इसमें हाथ में भोजन लगाया और ये जो है ना आपने पानी उसी हाथ में पियो, ये जो है ना मनुष्य का स्वभाव है। दूसरे हाथ में पानी नहीं पीना चाहिए, ये धर्म ग्रंथ का कहना है, ये स्वभाव है। तो स्वभाव का अर्थ क्या है? स्व माने आत्मा और भाव माने धर्म। आत्मा का जो धर्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये जो प्रकृति है इसको जानना ही मनुष्य का स्वभाव है। ये है स्वभाव का कई अर्थ है, स्व माने आत्मा, भाव माने धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये आपकी स्वभाव है। दक्षिण भारत में अलग भोजन करते हैं, वही उनकी प्रकृति है। गुजराती के यहां चले जाओगे, गुजरात में कुछ भी दो, बटाका की सब्जी बढ़िया है, लेकिन खांड यदि नहीं होगा तो उनको पसंद नहीं आता। गुजरात बोले खांड चाहिए, वो बड़ा अच्छा है, वो केमछो एमछो जरूर करेंगे, सूछे जरूर कहेंगे, लेकिन उसमें खांड चाहिए, स्वभाव है। इसलिए गुजरात की कढ़ी बड़ा अच्छा लगता है, सफेद, और यूपी की कढ़ी हल्दी वाला, हम लोग की कढ़ी जो होता है ना, वो हल्दी जो लगाते हैं, वो नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता। इधर की कढ़ी अच्छा है, उधर की कढ़ी भी ठीक है। कृष्ण से लोगों ने पूछा कि आप गुजरात में आए महाराज, क्या बात है? बोले यहां के लोग बड़े मीठा है, मीठू हैं बहुत। तो बोले क्या है? बोले भाई छे बहन छे ये करेंगे। तो कहा कि गुजरात में जब आया तो मैंने ये देखा, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, भक्ति जब आई तो गुजरात में बूढ़ी हो गई। भागवत जी में गुजरात की थोड़ी निंदा की गई है, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आई तो भक्ति बूढ़ी हो गई। बोले क्यों आप बूढ़ी हो गए? बोले गुजरात वाले जिसको मानते हैं मानते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें क्या है। इसलिए कहीं कहीं स्थल पर भक्ति जो है ना बूढ़ी हो गई। इसलिए एक स्वभाव है। तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे स्वभाव है, क्या स्वभाव है? दान करना, धर्म करना, पूजा पाठ करना, जप तप करना, आपकी एक स्वभाव है। अभी हमारे पिताजी बोल रहे थे ना कि 50 साल हो गया कथा सुनते सुनते, और हम बहुत पुराने हैं, तो बात तो सही है, आपकी स्वभाव है ये। ये सत्संग ही आपका भोजन है। आप नीचे बैठते हैं ये आपकी स्वभाव है, कुर्सी में बैठते हैं ये आपकी स्वभाव है। कुर्सी में बैठने पर भी परमात्मा का स्मरण करते हैं, ये आपका परम स्वभाव है। ये आपका स्वभाव है, ये प्रकृति का एक स्वभाव है, इंद्रियों का। लेकिन मन ईश्वर के चरणारविंद में लग जावे तो ये परम स्वभाव है। यही हमार बड़ी सेवकाई, ले हुन बसन बासन चुराई। जब भगवान दंडकारण्य में गए तो भीलों ने कहा कि हमारी एक स्वभाव है महाराज। बोले क्या? आपके धनुष बाण को हम चोरी नहीं करेंगे, स्वभाव से हम चोर हैं, डाकू हैं, वनवासी हैं, लेकिन राम तुम्हें देख करके लगता है कि तुम्हारे धनुष बाण को चोरी नहीं करेंगे। यही हमारी बड़ी सेवकाई, लेहुन बसन बासन चुराई। आपके ये कपड़े को नहीं लेंगे, आपके धनुष बाण को नहीं लेंगे। बोले हमारी स्वभाव है। तो भगवान को लगा कि धन्य है। इसलिए रामेश्वर के सेतु बंधन में जब उसने देखा और एक छोटी सी प्राणी समुद्र में स्नान करता है और जा करके वो गिलहरी बालू को जब देता है छोड़ता है, तो राम जी ने पूछा ये क्या है? बोले हमारी स्वभाव इतनी शक्ति है कि आपके काम में हम सहयोग करते हैं। तो भगवान राम के जो है ना आंखों से आंसू आए। उसने कहा धन्य है कि इनका जो स्वभाव है। तो गीताकार कृष्ण भगवान ने एक शब्द बड़ी अद्भुत बात बताई कि आपके पास एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? मन। ये मन का स्वभाव क्या है? चंचल। चंचल मन को परमेश्वर में दे देना, इसका नाम है श्रद्धा। अश्रद्धाना, श्रद्धा का कई अर्थ है। एक श्रद्धा का अर्थ तो स्वामी अखंडानंद जी ने कहीं सुना मैंने वृंदावन में, श्रद्धाती इति श्रद्धा, महाराज जी कहते हैं है तो व्याकरण में श्रद्धाती, सत्य स्वरूप ईश्वर को हृदय में धारण करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। एक अर्थ तो ये है, जो सत्स्वरूप परमात्मा है उसको हृदय में धारण करो, ये श्रद्धा है। और एक श्रद्धा शब्द से मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन ग्रंथ को जब लिखा, तो मधुसूदन सरस्वती जी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने ओंकार का उच्चारण करते थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। एक बार जो है ना एक प्रेत मिला बनारस में, और काशी का जो भूत है ना उसने कहा कि तुम जिसकी उपासना करते हो कृष्ण की उपासना करो, और कृष्ण मंत्र दिया। जब कृष्ण मंत्र से उसने उपासना की और 6 महीना हो गया तो भगवान का दर्शन नहीं हुए। मधुसूदन जी ने कहा कि बहुत दिन हो गए दर्शन तो दिया नहीं, तो उन्होंने कहा देखो जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जो है ना भगवान का दर्शन होता है। जिस समय अविद्या का नाश हो जाता है उस समय ईश्वर का दर्शन साक्षात होता है, क्योंकि आवरण का नाश हो जाना ही परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर का दर्शन हो रहा है लेकिन मेरा और तेरा रूप में हो रहा है। ये मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस रूप में दर्शन होने पर भी अपरोक्ष ज्ञान के रूप में नहीं है। ये देखो अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है ना कि अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं यदि आत्मा हूं तो मैं सुख और दुख से परे हूं, मैं रोग और भोग से परे हूं, कोई निंदा करता है तो मुझे नहीं करता, कोई प्रशंसा करता है तो मुझे नहीं करता, ये भाव। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे एक श्रद्धा है। मधुसूदन जी ने जब पूजा अर्चना की तो दर्शन नहीं हुआ, तो एक भूत ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। एक दिन बैठे थे और भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया, तो गीता जी में मंगलाचरण नहीं है। गीता जी में जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो आया है ये मंगलाचरण नहीं है, ये महाभारत के उद्योग पर्व के श्लोक है, ये कोई मंगलाचरण नहीं है। तब बोले कि मंगलाचरण कैसे करेंगे, तो मधुसूदन सरस्वती जी ने भगवत गीता जी में ये मंगलाचरण की, बंसी विभूषितकरण नवनीरदा भात पीताम्बरा धरुण बिंब फला धरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मधुसूदन सरस्वती जी ने जब मंगलाचरण की तो उन्होंने भगवान का जैसे रूप था ना, जैसे दर्शन किया था वैसे लिखा। वंशी विभूषित करण, आप वंशी को धारण किए हैं, लेकिन कहा कि नव नीरदाभात, अभी अभी नया नया जो है ना बादल है आकाश में, नीरदा आभास बिल्कुल काले मेघ है, अभी अभी बारिश होने वाला है, वर्षा करने वाले हैं, और ऐसे नया बादल है कि अभी बरसने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप है ना ऐसे है, नव नीरदाभात कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। महादेव जी का जो रूप है ना कर्पूर और गौर वर्ण के समान है, वो थोड़ा कर्पूर है और गौर वर्ण है। आप राम जी का जो रूप है नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम, नील कमल के समान अत्यंत कोमल शरीर है भगवान राम का है। और दुर्गा जी का जो रूप है उद्यत भानु सहस्त्र कोटि सदृशाम केयूर हार उज्ज्वलम, ये जो है ना अरुण वर्ण वाली माता जी है, लाल वर्ण। तो श्रीकृष्ण भगवान का दर्शन जब उन्होंने किया तो स्वामी करपात्री जी ने एक जगह पर लिखा है नव नीरदाभात, इतना काला, इसलिए आपका नाम श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर को रुक्मिणी ने पूछा कि आप इतना काले क्यों हो गए, तो उन्होंने कहा काला इसलिए हो गया, मैं काले में काला रंग ही चढ़ता है, दूसरा रंग नहीं चढ़ता। काला में पत्नी का रंग नहीं है, बेटे का रंग नहीं है, घर का रंग नहीं है, किसका रंग है? बोले जो भक्त है उसी का रंग है। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा नाम श्याम है, लेकिन श्याम एव सुंदरम यस्य, श्याम ही जहां सुंदर है उसको कहते हैं श्याम सुंदर। काला में दूसरा रंग नहीं चढ़ता, काला में काला ही चढ़ता है। जिनके ऊपर कोई रंग न चढ़े वही सुंदर होता है। हम लोग के ऊपर सबका रंग चढ़ा है, पड़ोसी का चढ़ा है, बच्चों का चढ़ा है, लड़के लड़कियों की चढ़ा है, सभी की रंग चढ़ा है। एक आदमी गया बनारस में, बोलता है महाराज बम्बई का जो गोलगप्पा है उसका आनंद दूसरा है, बोलता है यहां का जो गोलगप्पा है वहां तो 10 रूपये में बढ़िया मिलता है। बनारस में बंगाली टोला में एक कचौड़ी गली है, आप कचौड़ी लो। उसने कहा आनंद है, मुझे मेरी कथा थी 10 साल वो अंधेरी में, तो एक शेठ जी हमको छोड़ने आए आए तो बोले कि हमारे घर चलो आप, वहां प्रेमपुरी आश्रम में कथा थी मेरी स्वामी जी के यहां त्यागमूर्ति के यहां। तो आए तो बोले महाराज जी आपको मैं घर ले जाता लेकिन मेरा परिवार आज संडे है, सब गोलगप्पा खाने के लिए समुद्र किनारे में गया है। उसने कहा घर में कोई नहीं है और मैं भी जा रहा हूं वहीं जहां मेरा परिवार गया है, क्योंकि गोलगप्पा का रंग उसको चढ़ा है। तो देखो रंग तो सभी को चढ़ा है लेकिन कृष्ण को किसी का रंग नहीं चढ़ा है। इसलिए वेदांत में श्याम सुंदर शब्द कहा गया है, श्याम एव सुंदरम, श्याम ही सुंदर है। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने इस बात का निरूपण करते हैं कि बंसी विभूषित करा नव नीरदाभात, नया नया मेघ के समान जो बादल, ऐसे बादल हैं जो अभी वर्षा करने वाले हैं। इसको पूज्य करपात्री महाराज ने लिखा है कि भगवान क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। क्या वर्षा करते हैं? कृपा। कृपा की वर्षा जो है ना परमेश्वर करता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए ईश्वर कृपा करता है। तो एक अर्थ तो ये है कि अश्रद्धाना, जो श्रद्धा नहीं करता, किसके ऊपर श्रद्धा नहीं करता, जो वेदांत के ऊपर गुरु के ऊपर, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार बत्मनी। श्रद्धा देखिए जब आप करेंगे ना तो आपके पास एक बहुत बड़ा आएगा, दुख आएगा। दुख का अर्थ होता है कि आप जिसको चाहते हैं उसका अपहरण हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। आप जिसको भी चाहते हैं ईश्वर उसको जो है ना नाश करेगा। और ईश्वर जब इस प्रकार की विधान करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, धन को चाहते हैं, पुत्र को चाहते हैं, संसार को चाहते हैं, तो आपके इच्छा का अभाव धीरे धीरे होने लगेगा। थोड़ा दुख आएगा, थोड़ा बिखे पाएगा, उस समय भी आपके भाव आ जावे कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, जैसे ये मेरे प्रभु की इच्छा है, तो वहां पर एक श्रद्धा की जो है ना कमी नहीं होगा। श्रद्धा में एक बहुत बड़ा जो है ना कमी है कि आपकी श्रद्धा गुरु के प्रति है और गुरुदेव ने आपको कुछ कह दिया। श्रद्धा जो धन है वो श्रद्धा में बहुत, एक साधना पक्ष में श्रद्धा सबसे बड़ा है, षट संपत्ति में श्रद्धा को माना गया है। लेकिन ऐसे श्रद्धा होनी चाहिए, जो कथा आप सुने होंगे कि उपमन्यु को देख करके उसके मामा ने कहा कि यहां दूध लो, आनंद लो। उपमन्यु बालक मामा के घर में गए, दूध लिया, खूब पिए। 2 महीने के बाद जब घर आए तो मां से कहा कि दूध चाहिए, घर में दूध नहीं था। ब्राह्मणी ने आटा घोल करके एक गिलास दूध दिया। उसने कहा कि जो मामा के घर का दूध और यहां का दूध में तो अंतर है। तो ऋषि पत्नी ने कहा कि बेटा ऐसे है ना, वो जो दूध था ना वो गौ का दूध था और ये जो दूध है ना ये आटा का है। बोले माता जी ये कैसे हो गया? बोले हम लोग गरीब, हमारे पास है नहीं, तो बोले कैसे होगा, तो बोले शिव की आराधना करो और शंकर की आराधना करने के लिए जब चले, इच्छित फल बिनु शिव वराधे लहिय न जाई कोटि जोग जप साधे। भगवान शंकर की आराधना के बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो जब गए तो शंकर जी इंद्र बनकर के आए, ये कथा है। इंद्र ने कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि न त्वाम शक्रये दत्तम, मैं तुम्हें कुछ मांगना नहीं चाहता, मेरा इष्ट देव शंकर जी हैं, आप हमारे अतिथि हैं, आपको प्रणाम है, न त्वम कामये, मेरी कोई कामना नहीं है। तो भगवान शिव को लगा कि यह श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा में जो निष्ठा होता है ना, वही काम करता है। गुरु मंत्र आपको ज्ञान है, गुरु आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुरु मंत्र में और गुरु में जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का जो भाव है, ये जो निष्ठा है ना, वो श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए श्रद्धा धनेन मुनिना, श्रद्धा रूपी धन है। ये श्रद्धा क्या है? वेदांत और गुरुवाणी में पूर्ण विश्वास हो जाना, ये शास्त्रों में श्रद्धा है। वेदांत वाक्य सुविश्वास श्रद्धा। इसलिए उपमन्यु बालक के प्रति जो है ना, वही इंद्र महादेव बन गए और महादेव जी ने दर्शन दिया, ये हमारी श्रद्धा है। वेदांत वाणी में और गुरुवाणी में मैं भगवान के हूं, राम सुखदास जी तो यही कहते थे, मैं भगवान के हूं और भगवान मेरी है, ये भाव आप रखें, ये आपकी श्रद्धा है। एक महात्मा जी ने और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जब आदमी मरता है तो कृष्ण नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, लोग नहीं कहते, राम नाम सत्य कहते। ऐसे क्यों कहते हैं? बोले आदमी को जब ले जाते हैं तो शिवलोक जा रहे हो, और शिवलोक जो है स्मशान स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप स्रगभ निगरोटी परिकर। भगवान स्मशान में रहते हैं और स्मशान के मालिक शंकर हैं, शंकर के घर में आप जा रहे हैं, लेकिन शिव को क्या चाहिए? तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जप हूं अनंग राती। आपको तो केवल राम चाहिए, इसलिए महादेव को श्रवण कराने के लिए वो राम नाम सत्य है कह करके मुर्दे को लेकर के जाता है। मुर्दा इस बात का प्रतीक है कि संसार मिथ्या है, अहम तुम मैं ये मिथ्या है, और जिस समय जीव मुर्दा हो जाता है तो वही राम को प्राप्त करता है। देखो सवाकारम यावत भजति मनुजो तावत असुचि, विवेक चूड़ामणि में आया। इसलिए एक भाव तो ये है कि भगवान शंकर के पास जा रहा है, शंकर जी को राम ही अच्छे लगते हैं, इसलिए शंकर जी की निष्ठा राम में है, राम की निष्ठा शिव जी में है। ऐसे जीव के प्रति प्रेम परमेश्वर का है और परमेश्वर के प्रति जीव का प्रेम है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर से अलग नहीं है। आपकी श्रद्धा जो है ना परमात्मा में है और परमात्मा की प्रेम भाव आपके प्रति है, इसलिए दोनों में एक श्रद्धा भाव है। रामायणी लोग कहते हैं कि राम जी खड़े हैं और सीता जी आई और फूलमाला देने के लिए चली। राम जी त्रेता युग के थे, सात हाथ के लंबा चौड़े थे, सतयुग के लोग 21 हाथ के लंबे चौड़े होते थे और त्रेता के 17 हाथ के होते थे, द्वापर में 7 हाथ होते हैं और कलियुग में 3 साढ़े 3 हाथ के होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता। राम जी को फूलमाला लेकर के जानकी जैसे गई है ना, तो राम जी बड़े खड़े हैं, बड़े लंबे हैं, तो कहते हैं कि देखा लखन जी ने, ये तो खड़ी है और वो सिर नीचे नहीं झुका रहे हैं, तो दौड़ करके लखन जी आए और राम जी के चरण को पकड़े। जैसे राम जी के चरण को पकड़े तो राम जी सिर झुका करके लखन जी को उठाया। जैसे उठाया तो सीता जी ने फूलमाला दे दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को निरूपण किया कि लखन एक जीव का रूप है, जीव स्वरूप है, राम परमेश्वर है और उनकी माया उनको फूलमाला पहनाने जा रही है, लेकिन माया पहुंच नहीं पाती है। जिस समय जीव शरणागति में चला जाता है तो फूलमाला गले में पड़ जाता है और यही माया भक्ति बन जाती है। भक्ति तब तक फूलमाला नहीं पहना सकती जब तक जीवात्मा शरणागति में नहीं होता। ये देखो, जीवात्मा शरणागति में हो गया, फूलमाला आ गया, भक्ति आ गया। और यही भक्ति की प्राप्ति करना शास्त्रों में श्रद्धा कहा गया है। मधुसूदन जी ने ये भक्ति रसायन में लिखा है, आदो श्रद्धा ततो भक्ति, ऐसे लिखा है। पहले श्रद्धा है, इसलिए कृष्ण कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा, जो श्रद्धालु नहीं है, जिन्होंने गुरु परमेश्वर को नहीं जाना, तो कहते हैं अप्राप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वत्मनी। वो मुझे यदि प्राप्त नहीं होगा तो कहां जाता है, तो मृत्यु संसार। ये संसार को मृत्यु कहा गया, ये संसार क्या है, बोले मृत्यु संसार, मृत्यु एव संसार, मृत्यु संसार, ये संसार का नाम ही मृत्यु संसार है। संसरति इति संसार, ऐसे बताया। संसार का अर्थ होता है संसरति। एक बार संतों की मंडली कलकत्ता में गया और कोई कार्यक्रम था होली का, तो वहां जो है ना प्योर जो गौ का दूध है, काजू किशमिश बादाम लगा करके गिलास में, वो कहां से लाए थे, भांग जो है ना वो था, चरस था, क्या था, घोल करके जो है ना एक ही गिलास पिलाया लोगों को, बड़े अच्छे भाव से पिलाया। हावड़ा में बड़े बाजार में कार्यक्रम था, उसमें मैं भी गया था। पीने के बाद जो है ना जब लोग पिया तो ऐसे लग रहा है कि पूरा कलकत्ता ही घूम रहा है वो सब। उसके बाद थोड़ा चाय मिल गया और चाय मिल गया पी लिए तो तीन दिन तक किसी का होश नहीं था, उसमें हम भी थे, कि पूरा कलकत्ता जो है ना घूम रहा है। कलकत्ता घूम नहीं रहा है, लेकिन वो जो चरस था, वो जो गांजा था, उसके पीने से वो हुआ कि पूरा हावड़ा कलकत्ता घूम रहा है। ऐसे संसार की जो मोह आसक्त रूपी भांग जब लगता है ना, उसको ऐसे लगता है कि ये संसार ही घूम रहा है, ये दुनिया ही ऐसे है। इसलिए यहां पर कहते हैं मृत्यु संसार वर्तमनी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो मृत्यु है इस मृत्यु नाम का ही संसार है। मृत्यु होना ही संसार है, जन्म होना और मृत्यु होना इसको संसार कहा गया है, उस संसार में आता है। इसको गीता जी में कई जगह पर बताया कि जब तक मुझे प्राप्त नहीं होता, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति तयम देह स याति परमाम गतिम, अंत काल में मेरा स्मरण करो। बोले अंत काल में स्मरण कैसे होगा, तो कहा गया तद्भाव भावित कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहू मोहिराम। ये दो उदाहरण दिया जाता है, एक कामाशक्त को नारी ही सब कुछ है और एक लोभी व्यक्ति के लिए धन ही सब कुछ है। कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमीदाम, इससे बढ़कर के उदाहरण दुनिया में है ही नहीं, संसार में कोई नहीं है। क्योंकि कामुक के लिए नारी ही सब है। एक महात्मा जी कहते थे कि देखो ये तुलसीदास जी गए ससुराल में और पत्नी जी ने कहा कि अस्ति चर्म मय देह मम जामे ऐसी प्रीति तामे श्रीराम में होत तो न तो हो भवभीति, धिक्कार है तुम्हें कि मैं कल आया और तुम चले आए, इतना कामाशक्त होकर के इतना प्यार भगवान में करते तो मोक्ष हो जाता, राम में करो, ये तो हड्डी मान सका है। एक ऐसे थप्पड़ लगाया कि ये तुलसीदास जी को ज्ञान हो गया और सदा के लिए अमर हो गए, रामचरितमानस लिखा, भगवान का दर्शन हो गया। धन्य हमारे भारत के लोग हैं कि उनके देवियां कितने थप्पड़ लगाती हैं रोज, लेकिन इनको ज्ञान नहीं होता। उसने ऐसे कहा कि कितना थप्पड़ लगता है, कितना डांटते हैं, लेकिन देवी यदि कह दे कि इतना प्रेम इतना भाव जो मुझसे तुम करते हो भगवान में करो तो धन्य हो जाओगे, ये भाव मिलने के लिए जो है ना देने वाले कम होते हैं ऐसे भाव। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में बार बार ये मदालसा को जब नाम लेते हैं विद्वान लोग कि मदालसा एक ऐसे थी जिनके घर में 5 बेटे थे और अंतिम बेटा को उसने कहा शुद्धोसी ब्रह्मोसी, तो ब्रह्म है तो शुद्ध है तो अजर अमर है, हाँ तुम्हारे जीवन निरंजनों से तो निरंजन है। तो इस बात का सिद्ध जो है ना गीताकार करते हैं कि तद्भाव भावित नित्य निरंतर मेरे स्मरण करो, मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। इदम सर्वम जगत, ये जितने भी जगत है मुझ में है। कैसे है? अव्यक्त मूर्तिना, नाम रूप को व्यक्त कहते हैं। संस्कृत में व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट हो जाना, नाम और रूप का जो प्रकट हो जाना ये व्यक्त है। नाम हुआ रूप हुआ ये प्रकट हो गया, नाम रूप के बिना शरीर नहीं होगा इसलिए आप व्यक्त हैं। कोई नाम होगा सोनू मोनू, कोई रूप होगा, इसलिए नाम रूप का जो व्यवहार है वो शरीर है और शरीर का जो व्यवहार है वो संसार है। संसार जहां पर है वहां शरीर है और आप शरीर के तल पर ये संसार है, और जिस समय नाम रूप से अलग हो जाएंगे, नाम रूप का व्यवहार नहीं बनेगा, उस समय आप असंसारी हैं, संसार वाले नहीं हैं। संसार में रहने पर भी संसार वाले नहीं, ये देखो। इसलिए कहते हैं अव्यक्त मूर्ति ना, ये परमेश्वर अव्यक्त है, नाम रूप से रहित है। जिस अव्यक्त ब्रह्म को नेति नेति शब्द से कहा जाता है वो परमेश्वर सर्वम मत्स्तानि भूतानि, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे में ओतप्रोत है। इसका मतलब एक विष्णु भगवान ये है कि जो शेष सज्जा पर सोते हैं, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, सांप को गद्दा बना करके सोने वाला ये तिरुपति बालाजी है, और एक महादेव बाबा ऐसे हैं जो सांप को गले में लेकर घूमते हैं, देखो नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय। दोनों का मतलब क्या है कि आप सांप को लेकर के जाते हैं। हिमाचल में एक मणिमहेश है, मणिमहेश में श्रावण में मेला होता है, तो वहां पर जो है ना वासुकी नाग आते हैं, दर्शन होता है उनका। मणिमहेश जो जगह है शंकर जी का है, बड़ा दिव्य स्थान है, और वो जाते हैं लोग वहां से जम्मू तरफ से, तो भगवान शंकर के जो गले में वासुकी नाग है ना वहां दर्शन होता है। सांप को महादेव भी लेते हैं और सांप के ऊपर विष्णु सोते हैं। ये देखो, ये संसार को किसने धारण किया है? वासुकी नाग। और वासुकी नाग को किसने धारण किया है? विष्णु और शंकर। तो ये वासुकी नाग संसार को धारण करते हैं, और संसार को धारण करने वाले सांप को, यानी संसार का अधिष्ठान कौन हुआ? ये भगवान विष्णु माने या शिव माने। इसलिए कृष्ण कहते हैं मया ततमिदम सर्वम, ये जगत के अधिष्ठान मैं हूं, आश्रय मैं हूं, इसलिए मत्स्तानि सर्वभूतानि, संपूर्ण संसार मेरे में है। लेकिन न च अहम तेषु अवस्थित, मैं उसमें जो है ना अवस्थित नहीं हूं, असंग हूं। अवस्थित का अर्थ होता है मैं उसमें स्थित नहीं हूं, असंगोयम पुरुषः। वेदांत कहता है ये असंग है, साक्षी है, दृष्टा है। दृष्टा में जो दृश्य है वो अध्यारोपित है, रस्सी में सांप नहीं है, तीनों कालों में रस्सी में सांप का अत्यंता भाव है। फिर भी रस्सी में सांप कह देने पर डर लगता है, सांप को देखने पर डर नहीं लगता, लेकिन सांप के नाम से डर लगता है, देखने पर भी डर लगता है। बोले कि क्यों डरते हैं, बोले सांप में विष है, यदि विष नहीं होता तो सांप में भय नहीं होता। भय इसलिए हुआ कि सर्प में जन्य जो है ना विष है। ऐसे संसार में भय इसलिए होता है कि बार बार जन्म बार बार मृत्यु। हमने देखा है कि जब आदमी मरने लगता है ना, कभी कभी होश रहता है तो उसकी आंखों से पानी निकल जाए। लोग पूछते हैं, बोलता है कि मैं छोड़ करके जा रहा हूं, मेरा घर मेरा परिवार मेरा संसार कैसे होगा, इसलिए वो देखता है। एक ने कहा तुम्हारी शादी हुई बहू, तुम इतना हंस रही है। बहू ने कहा कि मैं इसलिए हंस रही हूं और ये मेरा दूल्हा आज जो है ना बड़ा हंस रहा है और मैं रो रही हूं। तो दूल्हा से पूछा कि तुम हंसते क्यों हो, तो दूल्हा जी ने कहा हंसना आज है, कल से हमको रोना पड़ेगा, कल से हमको रोने का काम आएगा। बहू ने कहा रोना तो आज है हमको, कल से हम हंसेंगे और ये रोएगा। तो दूल्हा और दुल्हिनी एक उदाहरण दिया जाता है। इसी प्रकार से दूल्हा हो गया जीवात्मा, दुल्हिनी हो गया माया। दोनों का जब विवाह होता है तो एक संसार बनता है और ये संसार जहां पर नहीं है उसी को शास्त्रों में वासुदेव मिति सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ, यहां दुल्हा भी नहीं है दुल्हिनी भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मस्तानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित, मुझमें सब है लेकिन मैं असंग होने के कारण से उसमें नहीं हूं। इसका मतलब जैसे आकाश में वायु है, वायु असंग है, आकाश अपने जगह पर है और वायु अपने जगह पर है, इसी प्रकार से परमेश्वर असंग होने के कारण से दृष्टा है, दृश्य जगत में ओत प्रोत नहीं है, ऐसे भगवान का कहना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।